México. ब्लैक पर्ची या गाड़ी फौरन रोको, फौरन रुक जाओ, फौरन रोक लो।
तो तुम क्या कर रहे थे? पोया को भी मार दोगे? क्या मतलब, उसे रोक नहीं सके? अगर हम उसे भी खो देंगे तो क्या होगा फिर?
सारा क्या हुआ? क्या पोया को कुछ हुआ है?
पोया अपने बाबा की गाड़ी लेके बाहर निकल गया। बेहते जहरा हाईवे पर पुलिस ने उसे पकड़ लिया। अब मुझे जाना होगा।
कहाँ जाना होगा?
पुलिस चौकी। पुलिस ने गाड़ी बंद कर दिया।
खुदा हाफिज। अब कल तुम्हें माहिर नफ्सियात के पास ले जाना ही पड़ेगा।
ये तुमने क्या किया है पुया? अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो फिर मेरा क्या होता? अगर इसे कुछ हो जाता तो मैं अपने आप को कभी माफ ना करती।
मैंने तो कहा था कि उसे अकेले नहीं छोड़ना चाहिए। अभी भी घर वापस नहीं जाना चाहती हो?
मैं डरती हूँ। उस घर में हर जगह पैमान की यादें हैं, उनसे डरती हूँ।
अम्मी माफ कर दीजिए, उस दिन मैंने आपसे इस तरह से बात की कि मेरे इख्तियार में नहीं था। अगर आप सिर्फ मेरे लिए परेशान घर नहीं आना चाहती तो मैं वादा करता हूँ वैसी बेवकूफ़ी नहीं करूँगा। मैं समझ सकता हूँ कि क्यों उस घर को आप बर्दाश्त नहीं कर सकते। उसका गोशा गोशा पैमान की याद दिलाता है। जब बर्दाश्त करने की हिम्मत हो तो लौट आए। चलिए बाबा।
खुदा हाफिज़ बाबा जान।
बेहतर है चलें।
मैथ के अलावा तुम्हें क्या पसंद है?
कार रेसिंग का दीवाना हूं।
कार रेस के मुकाबले? अच्छा, तो तेज रफ्तारी के दीवाने हो।
उस मनहूस रात को मैं ही बाबा से इसरार कर रहा था कि तेज चलाएं। कितनी बड़ी गलती की, कभी भी भूल नहीं सकता।
कौन सी रात?
उसी हादसे की रात। इसीलिए मैं खुद को अपने भाई की मौत का जिम्मेदार समझता हूँ।
एहसास गुनाह हाँ। फिलहाल मैं तुमसे चाहता हूँ कि इस हादसे के बारे में न सोचो और अपनी जिंदगी के मुस्बत पहलू पर देखो। जैसे तुम एक जहीन लड़के हो और रियाजी के ओलंपियाड मुकाबलों में मेडल हासिल करना चाहते हो। खुदा ने तुम्हें जो नेमतें दी हैं बहुत कम लोगों को दी हैं। तुम्हारे इस सिलसिले में जिम्मेदारी है ये है कि किसी चीज़ को अपनी जहानत पर असरअंदाज ना होने दो।
अपना अपने भाई को जिसे मैं बहुत चाहता था।
मेरा मतलब ये है कि इस सानहे से तुम्हारी पोजीशन को मुतासर नहीं होना चाहिए।
अगर मेरा भाई न मरा होता तो इन बातों की जरूरत ना होती मुझे। मैं 100 गोल्ड मेडल भी ले आऊं तो मेरे लिए पैमान जैसे भाई की तरह नहीं हो सकते। ओलंपियाड की चकाचौंध और गोल्ड मेडल की चमक दमक 4 दिन की है डॉक्टर साहब, लेकिन भाई मेरा दोस्त और मेरा मददगार था।
तुम जिस रेंज को महसूस कर रहे हो मैं उसे समझ सकता हूँ। ये एक दबाव।
आप वाकई मेरी हालत समझते हैं?
तुम इत्मीनान रखो।
लेकिन मुझे नहीं लगता कि आप समझ रहे हैं। आपका भाई है?
नहीं, मैं अकलौता हूँ।
तो अभी मेरी तरह हो गए? नहीं, मैं आपकी तरह हो गया हूँ। आप तो इकलौती औलाद हैं। कभी भी भाई नहीं था कि जिसे आप खोना चाहें। आप कैसे मेरा हाल समझ सकते हैं? क्या इन चीजों को किताब लिखकर और यूनिवर्सिटी के इम्तिहान पास करके समझा जा सकता है? अगर आपकी सोच इस तरह की है तो बेहतर है कि दोबारा किताब को शायद ना करें। मुझे नफसियात का कुछ पता नहीं, लेकिन अगर मुझे तस्कीन दे दे तो यकीनन अच्छी चीज होगी।
इसने तुमसे ज्यादा गमजदा लोगों को तस्कीन दी है। सिर्फ उसको कमतर ना समझो, मुझ पर एतमाद करो। मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ।
बेहतरीन मदद यह है कि आप मेरा पीछा छोड़ दें, मुझे मेरे हाल पर छोड़ दें।
कहाँ जा रहे हो? अभी तुमसे बहुत काम है।
आप जाके अपना वक्त यूनिवर्सिटी के क्लासों में सर्व करिए। वहाँ बहुत से लोग हैं जो आपकी बातों के लिए मरे जाते हैं। चलिए बाबा।
कहाँ चलें? अभी 15 मिनट भी नहीं हुए।
ठीक है, बैठकर रिसाले पढ़ूंगा ताकि 1 घंटा पूरा हो जाए, ताकि आपकी फीस जाया ना जाए।
ठीक से बात करो, बताओ क्या हुआ।
पापा मुझे तंग मत करिए।
ये कोई स्कूल की मुशावरत नहीं है कि जिसे पहलू बचाकर निकल जाओ।
इनकी तरफ से खुशफहमी है।
उसका रवैया कैसा था?
जितना मैं सोच रहा था उतना बुरा नहीं था। उसकी शक्लो सूरत की बात करूं, देखें, खुद अपनी शक्लो सूरत से बेहतर है।
जी नहीं, बेहतर। जी 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 एदाद साहब, डॉक्टर को आपसे बात करनी है।
जी
अम्मी की मौत ने मुझे तोड़ के रख दिया था, लेकिन बच्चे की मौत कुछ और ही है। कोई गम इस दुनिया में उससे बड़ा नहीं होता। बाबा आप कितने बरसों से अकेले हैं?
तुम खुद नहीं जानती हो।
कैसे इतने सालों से बर्दाश्त किया?
मैं तुम लोगों के साथ खुश था, तुम्हारे और अपने नवासों के साथ मोहब्बत करता था। अमीन भी मेरे बेटे की तरह था कि मेरा बेटा नहीं था।
इसीलिए आपने वो कंपनी उसके सिपोर्ट कर दी। उसने भी इसका बदला देने और शुक्रिया अदा करने के बजाय आपकी पढ़ी लिखी बेटी को घर में बिठा दिया। मैंने कभी आपको इसकी सरजनिश करते
पहले तो मैं ये नहीं चाहता था कि तुम्हारी जिंदगी धर्म भ्रम हो जाए। और फिर अमीन की काबिलियत को भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। उसने एक बेरौनक और कर्ज में डूबी हुई कंपनी को लिया और तमाम कर्ज के साथ उसको यहाँ तक पहुँचा दिया। सारा हम अमीन के मरहूने मन्नत हैं।
किस हद तक मरहूने मन्नत हैं? इस हद तक कि वो एक आर्किटेक्ट इंजीनियर को एक घरेलू औरत बना दे?
तुमने कभी भी ऐसी बात नहीं की। अब चूंकि किसी और वजह से परेशान हो तुम्हें ये बातें याद आ गईं।
नहीं बाबा, इसका ताल्लुक नहीं है। अगर ये बातें नहीं की तो इसका मतलब ये नहीं कि मेरे दिल में नहीं थी। ये बातें मैं बरसों से बर्दाश्त किए हुए थी, इसलिए कि अब तक मैं अपने बच्चों के साथ खुश थी। लेकिन अब जबकि
तुम्हारे पास अब भी पोया है सारा, मैं तुमसे जवाब दे ही नहीं चाहता। लेकिन तुम्हें इससे ज्यादा अपने और दूसरों के साथ इतना सख्त नहीं बनना चाहिए। ये तो ठीक नहीं है।
बाबा इन हालात में आप मुझसे सही काम की तवक्को मत रखें। मेरी बर्दाश्त बस इतनी ही है। आप ठीक कहते हैं, मैं अमीन के बारे में हसास हो गई हूँ। उसके रवैये और कामों से मुझे तकलीफ होती है।
लेकिन अमीन तुम्हें दुख नहीं देना चाहता।
लेकिन उसने ऐसा काम किया है कि आखिरी उम्र तक अजाब झेलूं। घर आने से बेतवज्जुही, ड्राइविंग में बेहतियाती, क्या मर जाता वो अगर इस मनहूस टेलीफोन का उस रात जवाब न देता?
यानी अगर तुम अमीन के बजाय ड्राइविंग सीट पर बैठी होती और तुम्हारे साथ ये वाकया हो जाता तो फिर अमीन को यह हक दे दी कि वो ऐसा ही रवैया तुम्हारे साथ रखता?
पता नहीं, शायद वो मुझसे इससे भी बुरा सलूक करता। वो मुझसे ज्यादा मजबूत है। बाबा खुदा के लिए, जब तक मेरा दिल उसकी तरफ से साफ ना हो जाए, आप मुझे वापस घर जाने पर मजबूर ना करें।
सारा ठहरो। मेरी बेटी, ये तुम्हारा ही घर है। मैं ये बातें इसलिए नहीं कर रहा कि तुम्हें जाने पर मजबूर करूं। मैं सिर्फ ये नहीं चाहता कि कीना और गुस्सा तुम्हें कोई और सहारा बना दे।
ठीक है, आप अपना काम जारी रखें, मैं खुद इंजीनियर साहब से बात करती हूँ। कोई बात नहीं, खुदा हाफिज।
यजदानी साहिबा, एक मेहरबानी करें, अस्पताल टेलीफोन मिलाएं, इस मजदूर की खैरियत मालूम करें जो वहाँ दाखिल है।
इंजीनियर शाकी को सारे वाकई का पता है, आप खुद उनसे क्यों नहीं पूछ लेती?
बुरी तरह जख्मी हो गया है, अलबत्ता खुदा का शुक्र है कि करीब उलमर्ग नहीं।
खुदा का शुक्र है कि उसके दिमाग पर चोट नहीं लगी। मजदूरों की बीमे के लिए कुछ किया?
नहीं, अभी नहीं। सारा वक्त तो मजदूरों का काम कर रहा था, अब आपकी खिदमत में हूँ।
अच्छा, तो आप नहीं कर पा रहे हैं, किसी और से कह देते कि वो काम कर देता।
इतनी जल्दी क्या मैडम?
इतनी जल्दी? कल मजदूरों ने काम से इनकार कर दिया, कहा कि जब तक इंश्योरेंस नहीं होगा नहीं आएंगे। मुझे नहीं पता कि आज भी काम पर गए हैं या नहीं।
उनकी ऐसी की तैसी, जो चीज ज्यादा वो मजदूर हैं। दौलत खास से भी कहा है कि जो भी काम पर आएगा वो फारिग है।
गलत करने और धमकियां देने से तो काम ठीक नहीं होगा इंजीनियर साहब।
इत्तेफाक से इंजीनियर साहिबा, काम ऐसे ही ठीक होगा। ये नर्सरी या प्राइमरी स्कूल तो नहीं है कि हम वहाँ लोरियां और नज़में सुनाते फिरें। वो इमारत के मजदूर हैं और इमारत का काम सख्त है।
तो फिर आपको अपने बारे में सोचना।
इंजीनियर साहब, मुझ पर एक मेहरबानी करें, आप अपने दफ्तर में बैठे और इन मजदूरों से निपटने का काम मुझ पर छोड़ दें।
आप किस तरह उनसे निपटना चाहते हैं? उनके इंश्योरेंस ना करें, उनसे काम ले? नहीं इंजीनियर साहब, मैं मजीद हाथ पर हाथ रख कर नहीं बैठ सकती। यजदानी साहिबा
जी,
एक जहमत करें, मजदूरों के इंश्योरेंस की फहरिस्त आज ही भेज दें। अगर दोपहर तक ये काम ना हुआ तो मुझे बताना कि मैं कुछ और सोचूं।
इंजीनियर साहब, आपको मेरे काम में मुदाखलत करना इतना क्यों पसंद है? मोतमेदी की फाइल के बारे में भी हमने आपस में बात की थी, अभी मेरा हाल खुश नहीं हुआ कि इसकी बारी आ गई।
इंजीनियर साहब, काम की अंजामदही को मुदाखलत का नाम ना दें। और फिर मोतमेदी की फाइल का काम अभी मुकम्मल नहीं हुआ है।
ओके ओके, तो अभी भी कोई तंग करने वाला मौजूद है?
आप ही सबसे ज्यादा चालाक नहीं है फरीबुर साहब, शायद ये हिदिया ही आपको सबक सिखा दे।
जो हाथ मेरे हाथ पर उठना चाहेगा मैं उसको तोड़ दूंगा, जो कोई भी हो।
ये बातें हिदिया के सामने भी कभी कही?
ऐसा एक बात तुमसे कह रहा हूँ, तुम तो शुरू ना करो।
यहाँ क्या कर रहे हो? रुको दो, रुको।
सलाम अलैकुम बाबा।
वालेकुम अस्सलाम, कैसे हो?
मैं ठीक हूँ, मोटरसाइकिल चलाने में बहुत मजा आता है।
क्या मोटरसाइकिल पर आए हो?
जी, पारसा साहब ने मुझे पहुँचाया।
पारसा साहब?
हमारे मुशीर।
अरे कितना अच्छा मुशीर है, क्यों तुम्हें छोड़ने आया?
चलो पता चल गया, वो मुझे स्पीड पसंद है।
तो बिलाखिर तुम भी अपने हॉल से बाहर निकल आए, एक मिल गया कि जिसे दोस्ती कर सकते हो।
मैं इतनी आसानी से किसी का दोस्त नहीं बनता।
लेकिन तुम्हारी शक्ल से कुछ और लग रहा है।
मुझे कपड़े बदलने दे, फिर आकर बात करता हूँ।
जरूरी नहीं है, चलो ऑफिस चले।
ऑफिस क्यों?
मैं नहीं चाहता कि तुम घर में अकेले रहो।
अच्छा तो ऑफिस में भी अकेला रहूं?
इतने आदमी ऑफिस में है तो हम वहां किस काम के हैं, इंसान नहीं है? अब चलो भी।
बाबा खुदा की कसम मैं बड़ा हो गया हूँ, बड़ों में शुमार होता है। अब मेरे उम्र के लड़के पूरा घर चला रहे हैं,
क्या?
मैं चाबी चलाने वाला खिलौना नहीं हूँ कि मुझ में चाबी
भर रहे। कह रहा हूँ कि ऑफिस में आओ, मतलब? काम की बारीकियां सीखो।
अब डर रहे हैं कि अकेला रहूं तो कुछ तंग
चलो चलें, ज्यादा बहस मत करो तुम, चलो।
चलिए, थोड़ी बहुत इज्जत कर लिया करिए मेरी।
मोहतमदी साहब, मेरे हाथ में कुछ नहीं है, बेहतर है कि आप खुद बराह रास्त इंजीनियर हिदायत से बात करें। अगर वो हुक्म दें तो मैं आपके काम को आगे बढ़ाऊंगी।
इंजीनियर साहब तशरीफ रखते हैं?
जी नहीं, अभी ऑफिस में नहीं आए, लेकिन आएंगे। बेहतर है कि आप टेलीफोन करके उनके सेक्रेटरी से टाइम ले लें।
ठीक है, मैं आपसे दरख्वास्त कर सकता हूँ कि आप इस काम को देखिएगा।
जी ठीक है, जरूर।
बहुत बहुत शुक्रिया।
सेक्रेटरी को फोन करना मत भूलिएगा।
ठीक है, मैं अभी उनके सेक्रेटरी को फोन करता हूँ।
खुदा हाफिज।
मर जाओ के कभी नहीं रहती। हेलो।
हेलो, सलाम अलैकुम। इंजीनियर हिदायत साहब हैं
आप?
मैं मोहतमदी हूँ।
वो नहीं है।
क्या मैं उनके सेक्रेटरी से बात कर सकता हूँ?
माफ कीजिएगा, वो भी नहीं है। जी जी, वो आएंगे तो मैं कहूँगा कि आपसे रब्ता कर लें।
जी,
आपकी मेहरबानी, बहुत शुक्रिया।
कौन था?
मोहतमदी था, और कौन था? देखो दोबारा फोन करेगा, फोन किया तो उससे कहोगे कि इंजीनियर अपने बेटे के चलूम के बाद भी ऑफिस नहीं आएंगे, शायद दो महीने तक। महसा, शायद दो महीने तक।
मैं ये काम नहीं करूंगी, बस काफी है। मैं थक गई हूँ फरीबर्स, लोगों को इतना बेवकूफ बनाया है। मैं भी जवाब नहीं दूंगी तो वो खुद इंजीनियर हिदायत को फोन कर लेंगे, सो कौन बेइज्जत होगा?
आप वो करेंगे जो मैं कहूंगा, बाकी चीजों से आपका कोई सरोकार नहीं।
क्यों हमेशा मुझे वो काम करना चाहिए जो तुम कहते हो? शायद अब तक ऐसे ही था, लेकिन अब इसके बाद ऐसा नहीं है।
कंक्रीट की रसीदें लेकर मेरे कमरे में आओ।
उतरो बेटा, पहुंच गए। क्या तुम नहीं उतरोगे?
गाड़ी में बैठकर म्यूजिक सुनकर आऊंगा।
अच्छा ठीक है, ये चाबी लो। चाबी
वाह इंजीनियर साहब।
अस्सलाम वालेकुम मोहतमदी साहब।
क्या बात है, हमने आपकी आज ज्यारत कर ली है, लेकिन अब मैं आपको हाथ से निकलने नहीं दूंगा।
हाथ से नहीं निकलने देंगे? क्या मैंने कोई जुर्म किया?
भाई आप तो ऐसे कर रहे हैं जैसे कुछ पता ही नहीं है। लाचार हो गए इंजीनियर साहब।
कैसे मगर?
भाई आप तो ऐसे करने से कुछ पता ही नहीं है आपको।
आखिर मुझे किस चीज का पता होना चाहिए?
इंजीनियर साहब आपको अपने बेटे की कसम हमारे साथ ये ना करें।
आखिर मेरे बेटे की कसम क्यों दे रहे हैं बंदा खुदा?
मैं शर्मंदा हूँ इंजीनियर साहब, मेरी जबान में कीड़े पड़े। खुदा की कसम मेरा बिल्कुल ध्यान नहीं था। आप रंजीदा हैं, वल्ला मेरे सर पर इतनी बदबख्ती डाली है कि मैं अपने जिंदों और मुर्दों से भी बेखबर हूं। लेकिन इंजीनियर साहब मैं अपनी तमाम बदबख्ती का जिम्मेदार आपको समझता हूं।
मुझे? मुझे किस लिए?
भाई आप तो ऐसे कर रहे हैं कि आदमी शक में पड़ जाता है इंजीनियर साहब।
लगता है आपका दिल बहुत भरा हुआ है। चलो ऊपर चले, देखिए क्या मसला है। चले।
मुझे माफ कीजिए, मैंने आपको ज़हनत दी। आपका टेलीफोन या तो बंद है या दस्तरस में नहीं है।
आइए।
आपके लिए कोई पैगाम भी छोड़े तो आपको नहीं मिलता। कुछ अरसे पहले आपके कहन से मिला था मैं।
तशरीफ रखें।
उन्होंने भी आज अपने हाथ खड़े कर दिए कि मैं कुछ भी नहीं कर सकती।
अच्छा, बेहतर नहीं कि असल बात की तरफ आए?
यानी आप अपने असल बात से बेखबर हैं?
मोहतमदी साहब अपना मसला बताइए।
इंजीनियर अमीन साहब, हम 15 साल से इकट्ठे काम कर रहे हैं। इस तमाम अरसे के दौरान आपने मुझे इतना घटिया और बुरा काम करके नहीं दिया है। क्या आपने खुद वो नए घर देखे हैं जो हमारे हवाले किए हैं?
नहीं, मैं अपने मसाइल की वजह से नहीं देख सका। क्यों?
क्या हुआ?
इन चंद सालों में के जब से हम इकट्ठे काम कर रहे हैं, हकीकत में मैंने आपकी तरफ से चालाकी और धोखाधड़ी नहीं देखी है, लेकिन ये गलत आदमी की जो आपका करता धरता है, उसका नाम क्या है?
इंजीनियर शायकी?
हाँ, यही खुदा से बेखबर आदमी।
अब लेकिन उसने क्या किया?
खुदा ऑफिस में जा रहा हूँ।
कहाँ जा रहे हो? मैं इंजीनियर से क्या कहूँ?
मुझे क्या पता, कुछ भी कह देना।
ये मुआहदा हमारे दरमियान है या नहीं?
जी हाँ, अपनी बात कही है।
इस मुआहदे की शिक नंबर 4 में कहा गया है कि बाथरूम, टॉयलेट और किचन में 1 नंबर की बेहतरीन चीजें लगाई जाएंगी। खुदा आप खुद बताइए, ये सामान जिनको आपने इस्तेमाल किया है, क्या ये 1 नंबर है? यकीन करें इंजीनियर साहब, अगर मैंने भी अब तक शिकायत नहीं की तो ये आपके साथ 15 साल के बेहतरीन काम और रफाकत की वजह से है। ये तस्वीरें मुलाहजा फरमाइए इंजीनियर साहब।
क्या मतलब?
जब भी मैंने फोन किया और यहां आया इंजीनियर साहब, कहा गया कि आप नहीं हैं।
ये लीजिए।
जी इंजीनियर साहब।
यजानी साहबा, आपने मोतमिद साहब से क्यों कहा कि मैं नहीं हूं?
मैंने आज उन्होंने फोन किया था, मैंने कहा कि आप ऑफिस आ रहे हैं।
अच्छा, इससे पहले क्या?
एक दो बार ऑफिस फोन किया था इंजीनियर साहब, आप तो ऑफिस में नहीं आए थे।
तो फिर क्यों एक बार भी नहीं कहा कि मोतमिद साहब ने फोन किया था?
माफ कीजिए, मेरा ख्याल है मैं भूल गई थी।
यजानी साहबा, आप पहले तो इतना नहीं भूलती थी।
आइंदा ऐसा नहीं होगा इंजीनियर साहब।
इंजीनियर शायकी से कहो मेरे कमरे में आए।
वो नहीं है, ऑफिस से बाहर गए हुए हैं।
उनके मोबाइल पर फोन करें और कहें कि फौरन ऑफिस पहुंचे।
जी अच्छा।
मुझे माफ कीजिएगा इंजीनियर साहब।
कोई बात नहीं,
मैं आपसे उम्मीद रखता हूं कि ये काम जल्द से जल्द हो जाएगा।
जरूर जरूर, आप बेफिक्र रहें।
हेलो,
कहाँ हूँ फरीबर्स?
क्या है?
मोतमिदी ऑफिस में आया है, इंजीनियर साहब से बात कर रहा है।
आखिरकार उसने अपना काम कर ही दिया ना?
इंजीनियर ने कहा है कि जल्दी दफ्तर पहुँच।
ठीक आता हूँ।
इंजीनियर गुस्से में है, जल्दी ऑफिस पहुँच।
एक बार तुमने कहा मैंने सुन लिया, 10 बार तो मत बोलो, बहरा नहीं हूँ।
आओ, जो तुमने गुल खिलाए है खुद ही उसे चाहिए।
मैं ऐसा इतना टटर मत करो, मेरा दिमाग घूम जाएगा। सुकून मिल गया तुम्हें? मुझे इंजीनियर साहब के सामने जलील करके तुम्हें ठंडक मिल गई?
नहीं, आप बेफिक्र हो जाएं, क्योंकि इसके बाद मैं एक सेकंड भी इस ऑफिस में काम नहीं करूंगी।
हाय खुदाया, कितनी नाजुक मिजाज और जूदरंज।
नाजुक मिजाज और जूदरंज? मेरी इज्जत तो मुझे पता नहीं कि इस दफ्तर में मैं तुम्हारी सेक्रेटरी थी या तुम्हारी कनीज।
अब तुम्हें क्या हुआ? तुम क्यों डरी हुई हो? अगर बुरा हुआ है तो मेरे लिए हुआ है, तुम्हें क्या हुआ है?
यानी मेरे लिए तो बिल्कुल बुरा नहीं हुआ है ना। बाबा, इस आदमी ने जाकर इंजीनियर के सामने सब कुछ खोलकर बयान कर दिया है कि मैं किस तरह उसके सामने बहाने करती थी, किस तरह उसे टालती थी। उस वक्त इंजीनियर अपने तय नहीं कहेंगे कि लड़की उस ऑफिस में क्या कर रही थी। अच्छा ये बताओ, तुम किस वजह से नहीं चाहते थे कि मोतमदी इंजीनियर से मिले? हाँ,
तुमसे क्या मतलब, तुम्हें भी वजाहत देनी होगी।
सिर्फ उन कामों पर अफसोस है कि जो मैंने
क्या काम किया है तुमने। बार बार बोलती है जो मैंने तुम्हारे लिए काम किया है, जो काम किए हैं। क्या किया तुमने मेरे लिए, एहसान जता रही हो?
परी मुझे एक सवाल है, खुदा के वास्ते इसका बिल्कुल सही जवाब देना। तुम वाकई मुझसे शादी करना चाहते थे या सिर्फ इस बहाने से ऑफिस के राजों से वाकिफ होना चाहते थे?
कौन से राज? ऐसे बात करो जैसे पेंटागन या CIA की सेक्रेटरी हो। देखो मैं सा, यही वजह है कि जब भी रिश्ता मांगने की बात होती है तो मेरे हाथ पांव ठंडे हो जाते हैं।
रिश्ते की बात तुम धोखा दे रहे हो। देखो इंजीनियर साहब, तुम एक बात की इसमें फंस गए, कोई बात नहीं, तुम्हें तो मेरी सालगिरह का दिन भी याद नहीं था। अलबत्ता अगर याद भी था तो एक फूल तो नहीं लाए थे तुम।
लानत करे।
अस्सलाम वालेकुम प्रिया साहब। अजीब है कि आप इस तरफ दिखाई दिए। अब्बू के साथ आए हैं?
जी हाँ, मैं गाड़ी में म्यूजिक सुन रहा था।
कहाँ हो तुम?
जी जनाब, मैं हाजिर हूँ।
यजदानी साहबा कहाँ हैं?
मैंने उनको नहीं देखा, मैं तो अभी आया हूँ।
तुम्हारे कमरे में चलें, तुमसे काम है। मोतमदी यहाँ है।
ओह, अजीब ढीठ आदमी है, यकीनन टोटी पाइप और बेसन की कहानी से आपका सर खाया होगा।
बहुत शिकायत कर रहा है फरीबुर्स, मामला क्या है?
कुछ नहीं, मैंने कई बार उससे कहा कि थोड़ा सा सब्र कर ले ताकि मैं हर चीज आपको बता दूं।
फरीबुर्स,
खून खोलने लगता है जब इस तरह का पस्त आदमी कोई बात ही नहीं समझता।
बिलाखिर बताओगे नहीं कि मसला क्या है?
कोई मसला नहीं है जनाब, यकीन करें। जिस दिन से हमने इन साहब से मुआहदा किया उस दिन तक के जब इमारत की बुनियादें खोद दी गई, मटेरियल महंगा हो गया, हमारा बिल्डिंग का खर्चा भी बढ़ गया। इसका सबूत और दस्तावेज भी मौजूद है। हमारा बजट गैर मुल्की मटेरियल खरीदने के लिए काफी नहीं था, इसलिए मजबूर हुए कि हमने मुल्की मटेरियल इस्तेमाल किया। जब एक नासमझ इंसान मुतवज्जे नहीं होता है तो उसे टोंटी और पाइप में उलझना नहीं चाहिए। उसने हमसे इतनी मजबूत इमारत ली है कि जो 8 रिक्टर स्केल के जलजले से भी नहीं हिलती। घटिया आदमी हमारी आंख का कांटा देखता है, अपनी आंख का शहतीर नहीं देखता। जनाब यकीन करें, आपकी कसम, मैंने 10 से ज्यादा बार कहा कि मटेरियल की कीमत बूढ़ी औरतों की बीपी की तरह से मुसलसल बढ़ता ही जाता है। मैंने कहा कि आप अपनी जेब जरा ढीली करें, मुआहदे में थोड़ी सी इसलाह करें, कहीं मैं कल कला किसी और जगह से कम करने पर मजबूर ना हो जाऊं। अब मैंने क्या गलत काम किया है? मैंने इमारत के सरिये और कंक्रीट में से कोई चीज कम नहीं की, मैंने बुरा किया।
कल प्रोग्राम बना के उसके साथ इमारत जाएंगे, देखें क्या कहता है।
अच्छा जनाब, बहुत अच्छा है, आप खुद ही देखिए कौन सी बात सही है।
नेमत, अच्छी तरह ध्यान दो, मेरी बात गौर से सुनो, देखो मैं क्या कह रहा हूं। जब तक बाकी पैसे नहीं लोगे, मेज और सोफे हवाले नहीं करोगे। शाबाश, अब हुआ, शाबाश शाबाश। देखो, क्योंकि ये आदमी हिसाब किताब में थोड़ा बुरा है। हाँ ठीक है, हाँ, जरूर, अच्छा अच्छा, खुदा हाफिज।
अस्सलामुअलैकुम चाचा जान।
क्या मैंने नहीं कहा था कि अब यहाँ मत आना?
चाचा जान, मैंने गलती की, मैंने पूरे मामले की छानबीन कर ली है, मुझे अपने हाथ चूमने की इजाजत दीजिए चाचा।
छोड़ो ये लड़के, मेरे हाथ पांव चूमने से कोई फायदा नहीं है। तुम क्यों नहीं समझना चाहते हो? तुमने मेरी बेटी की इज्जत के साथ खिलवाड़ किया है। बाबा मैं किसी से क्या कहूँ, बाबा यासमन तुम्हें नहीं देखना चाहती है। बाहर जाओ, मैंने कहा बाहर जाओ, नहीं जाना चाहता बाहर। मुझे लगता है तुम समझना ही नहीं चाहते हो। तुम मेरी इज्जत से, हमारी इज्जत से, मुझ नेहाकान की इज्जत से खेल रहे हो और फिर चाहते हो कि मैं तुम्हें माफ कर दूं। तुम रो रहे हो? हाँ बेवकूफ, जाओ अपने लिए और अपनी बदबख्ती के लिए रो।
चाचा आप सही कह रहे हैं, मैंने गलती की, लेकिन मैं चाहता था।
लेकिन क्या, अपनी बात अधूरी ना छोड़ो। लेकिन क्या मेरी बेचारी बेटी, मेरी नूरचश्म तुम्हारी बातों की वजह से हलकान हो रही है? खुदा की कसम उसने कई दिन से खाना नहीं खाया है। इस वक्त तुम मेरी बेचारी बेटी से हर वो गैर शाइस्ता बात कह देते हो जो तेरी जबान से निकलती है।
चाचा मैं उसे माफी मांग लूंगा और आपसे भी।
बस
मुझे इजाजत दीजिए।
बाहर निकलो।
अगर कोई ख्वाब में देखे कि वो दुल्हा बना है और उसको पता ना हो कि उसकी दुल्हन कौन है, इसका मतलब ये कि उसकी जिंदगी का खात्मा नजदीक है। मैंने अब तक इतना खूबसूरत पहाड़ नहीं देखा
जी। मेहमान साहब हमेशा आपको अच्छी अच्छी जगहों पर ले जाते हैं। मैं कहता हूँ कि फूफी की बेटी, इंशाल्लाह जब हम शादी कर लेंगे तो हर रोज हर रात तुम्हें यहाँ लाऊंगा।
लेकिन क्या तुम्हें कोई और काम नहीं है?
अच्छा तो पहले काम।
शाबाश, अब जिंदगी के मर्द बने हो।
हमेशा जो भी कहें वही कबूल है।
कबूल है।
सुनिए, सिर्फ दुआ करें कि यूनिवर्सिटी के दाखिला टेस्ट में पास हो जाऊं।
तुमने इतनी मेहनत की है कि अब उसका नतीजा देख सको।
सच कह रही हो।
मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो?
फरिश्ते, पता नहीं क्यों एक अजीब सा एहसास होता है, मुझे धड़का लगा रहता है।
ये धड़का क्या है जो तुम्हें लगा हुआ है?
क्या ये मजाक करने का वक्त है? सच कह रहा हूं, पता नहीं मुझे महसूस हो रहा है कि हम एक दूसरे से नहीं मिल पाएंगे।
क्या मतलब, ये क्या कह रहे हो? तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हारा खानदान या मेरी अम्मी अपनी बात से मुकर जाएंगे?
नहीं। वाह वाह, अगर हम होते तो तुम्हारे दोनों कानों में सुराख कर देते और उसमें एक गुंदा भी डाल देते। मैं ट्रेन से जा रहा हूं। अरे भाई आप कहाँ आ रही हैं? अम्मी रुकिए, दो हालातों से खाली नहीं है, या मैं पास हो जाऊंगा या फेल हो जाऊंगा। अम्मी क्या आप खुद नहीं कहती थी कि जिंदगी सिर्फ यूनिवर्सिटी तो नहीं है? कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप ये बातें सिर्फ मुझे खुश करने के लिए कहती थी? अगर आपको यकीन है तो आपका रंग क्यों इतना उड़ा हुआ है?
हेलो,
सलाम अलैकुम हदिया, ऑफिस में हो?
वालेकुम सलाम भाभी, आप कहाँ हैं?
घर पर।
घर? आप घर वापस आ गई?
हाँ, लेकिन कोई भी चीज अपनी जगह पर नहीं है। पैमान के कमरे की चाबी कहाँ है?
मेरे पास है। आखिर सारा भाभी, ये काम क्या है जो आप अपने साथ कर रही हैं? भाभी, आपको उस कमरे में नहीं जाना चाहिए।
मुझे पैमान का अटैची चाहिए।
आखिर क्या कहूँ सारा जान, तुम घर पहुंचते ही क्यों पैमान की चीजों के पीछे पड़ गई हो?
हदिया, कहीं तुमने उन चीजों को इधर उधर तो नहीं कर दिया?
नहीं भाई, ये क्या सोच रही हैं? इत्मीनान रखें।
अमीन ऑफिस में है?
आधे घंटे पहले तक तो ऑफिस में थे। मेरा ख्याल है कि वर्कशॉप पहुंच गए होंगे। सारा, चाहती हो कि मैं भी घर आ जाऊं कि अकेली ना रहे?
नहीं शुक्रिया, तुम अपना काम करो।
ठीक है, खुदा हाफिज।
खुदा हाफिज।
काम खत्म हो गया, चलो अब उस तरफ देखो।
उस हिफाजती जंगले का क्या करोगे?
उसको जमा करके इमारत के पीछे फेंकना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि ये जगह पूरी खाली हो जाए।
مگه میشه ماه بیاد تو خواب من، مثل چشمای تو مهربون باشه؟ مگه میشه عمری از تو بگذره، زندگی برام هنوز جوان باشه؟ مگه میشه حتی آینه، حتی قابه پنجره، مثل عکسای تو دل بری نکن؟ حال امروزم و از کسی نپرس، دنیا با هیشگی برادری نکن. گاهی خاطر یه عکس قشنگ از تو دنیا و به قارت میبره، گاهی وقتا خیلی دلتنگ تو هم. این روزای بی هدف کی میگذره؟